श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 3 और 4। न रूपमस्येह ततो फलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि भौतिक जगत या भौतिक जीवन कब शुरू हुआ इसको समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं है, और कहाँ से शुरू हो रहा है ये समझ पाना भी संभव नहीं। लेकिन अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाना ये संभव है। जैसे हर व्यक्ति समझता है कि वह शरीर नहीं है, सिद्धांतिक रूप से समझ सकता है अगर वो सुने भगवद गीता की बात को। तो जब वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और जब वो समझता है कि जगत दुख का घर है और भौतिक भोग से वो सुखी नहीं हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से सोचेगा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे जा करके मैं इन भौतिक दुखों से मुक्त हो सकता हूं। इस प्रकार से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए और वैराग्य के द्वारा अपनी स्थिति को समझना चाहिए और भगवान के धाम की स्थिति को समझना चाहिए और भगवान के शरण जाकर के भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका हम देख लेते हैं पहले, फिर प्रभुपाद जी की टीका को देखते हैं। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, भौतिक जीवन रूपी अश्वत्थ वृक्ष जैसा भगवान ने वर्णन किया है, इसकी जो मूल हैं वह ऊपर भी जा रही हैं, और जिसकी जो मूल है या जड़ है वो ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। इस प्रकार का वृक्ष लोगों के द्वारा इस जगत में देखा नहीं जा सकता है, और किस प्रकार से यह खत्म हो रहा है कि खत्म होगा यह भी नहीं समझ पाएगा कोई, और यह भी नहीं समझ पाते कि इच्छाओं के जो जाल है इससे हम इसको कैसे नष्ट करें। वासनाओं के बारे में चर्चा की गई थी कि वासनाओं का जाल जो है वो फंसा इसमें जीव फंसा हुआ है अनादिकाल से। तो अनादिकाल से जो वासनाओं का चक्र है या जाल है उससे व्यक्ति बाहर कैसे निकले ये लोग समझ नहीं पाते, और इसका स्रोत क्या है, कब से ये भौतिक वासनाओं का निर्माण हुआ ये भी नहीं समझ पाते हैं, किससे हुआ और किस कारण से हुआ यह भी समझ में नहीं आता, और क्या आश्रय है यानी भौतिक इच्छाओं का क्या आश्रय है यह भी समझ में नहीं आता, और किस वस्तु का आधार लेकर के ये भौतिक वृक्ष ये बना हुआ है ये भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो कहेंगे को समझ में नहीं आता तो हम करेंगे क्या, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या समझ पाते हैं जगत में, उदाहरण के लिए आचार्य बोलते हैं हम ये समझते हैं कि मैं एक इंसान हूं, यज्ञदत्त जी का बेटा हूं, मतलब उदाहरण के लिए किसी यज्ञदत्त नाम के व्यक्ति का बेटा हूं, और जो देवदत्त के पिता हैं, मैं अपने कार्यों को करता हूं अपने इस पहचान के अनुसार और सुख और दुख का अनुभव करता हूं, मैं इस गांव में रह रहा हूं। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से परिपूरित होकर के हम लोग जन्म जन्मांतर इसी प्रकार का जीवन बिता रहे। जैसे मान लीजिए आपका नाम मुकुंद है, भगवान तो भगवान का नाम है लेकिन मैं नाम ले रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम है मुकुंद गुप्ता, ऐसे मैं एक इमेजिनरी नाम ले रहा हूं। अब व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जितनी तगड़ी तरह से पहचान वो अपने मुकुंद गुप्ता के रूप में कर रहा है इस जीवन में, ऐसे ही वह अपनी पहचान पिछले जन्म में पुष्कर शर्मा के रूप में कर रहा था। कोई भी नाम ले सकते हैं। आप कहने का अर्थ है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि वो इंसान था तो पिछले जन्म में भी वो अपनी बहुत पहचान, बहुत तगड़ी पहचान अपने उस पिछले शरीर से कर रहा था, और यानी कि उसका जो अज्ञान है वह 1% भी कम नहीं हुआ है शरीर के परिवर्तन से। अपितु हम इस जीवन में भी देखते हैं कि हमारे कितने शरीर परिवर्तित हो चुके हैं, और हर समय जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर से हमारी पहचान खूब पक्की होती है। तो ये है हमारा अनुभव। इसीलिए भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर क्षण हमारा जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, वह अज्ञान पर आधारित है, और भगवद गीता से सुनेंगे तब हम अपने शास्त्र स्वरूप को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान को के द्वारा अपनी स्थिति को समझना कि हम गलत अहंकार में हैं, व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। क्यों? व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस अश्वत्थ वृक्ष को समझा नहीं जा सकता है, और ये व्यर्थ के व्रतों और कार्यों का कारण है, और इस कारण से इसे काटना चाहिए वैराग्य की कुल्हाड़ी से, असंग शस्त्रेण, और बार बार विवेक का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए शब्द है दृढ़ेण। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक बार सुन लिया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो तुरंत उस बात पर स्थित हो जाएगा। उसको बार बार इस चेतना में अपने आप को रखना चाहिए। विवेक का अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान होना, और यह भगवान के भक्तों के द्वारा होता है। अपने को इस वृक्ष से अलग करके व्यक्ति को वो मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे व्यक्ति मुक्त हो सके, और यह है परिमार्गितव्यम का अर्थ। परिमार्गितव्यम शब्द जो है वो है चौथे श्लोक का पहली लाइन में आ रहा है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। उस स्थान को ढूंढे, भगवत धाम को जाने का रास्ता ढूंढे, उसी को वो बोला है परिमार्गितव्यम। मार्ग आप समझते हैं, मार्ग मतलब रास्ता, यानी वो रास्ता ढूंढना चाहिए जो भगवत धाम की प्राप्ति कराए। अब संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ है इंद्रिय विषयों की लालसा, और असंग का बिल्कुल अर्थ इससे विपरीत है, अर्थात इंद्रिय विषयों के इच्छाओं से विरक्ति। आंख के मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 उनके विषय हैं, तो उनमें हमारी आसक्ति रहती तो उससे व्यक्ति निरासक्त हो। इन भोगों को तो मैंने कई जन्म में भोगा है, इससे मैं सुखी हुआ नहीं, इस जन्म में नहीं हुआ और आगे भी नहीं होंगे, तो इसके लिए व्यर्थ प्रयास करना ये अच्छा नहीं है। इस बात को बोला जाता है दूसरे श्लोक में कि विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग हर योनि में हर जीवात्मा के लिए उपलब्ध हैं, केवल मानव जीवन में ही हम भगवान की जिज्ञासा करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपनी शक्तियों को विषय भोग में ना लगा करके भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ना चाहिए। अब ये वैराग्य को की संज्ञा या उसकी उपमा एक शास्त्र से क्यों करी गई है, कहां पे करी है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा, तीसरे श्लोक में बोला गया है। इस असंग को शस्त्र से क्यों किया गया? क्योंकि जैसे हम शस्त्र से अपने शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, इसी प्रकार से इस असंग के द्वारा, विषय भोगों की इच्छाओं को त्यागने के द्वारा, व्यक्ति वासनाओं का वो मिटा सकता है। लेकिन ये जो वृक्ष है ये बहुत ही गहरा इसकी जमावट है, इसीलिए शब्द आया है सुविरूढ़, इसीलिए दृढ़ेना शब्द भी आया है कि जो वृक्ष बहुत गहराई में जमा हो वो एक बार में नहीं कटेगा, कई बार प्रयास करना पड़ेगा, और जब तक ये वृक्ष नहीं कट जाता है तब तक व्यक्ति को प्रयास करता रहना पड़ेगा। इसका जो मुख्य जड़ है वह ब्रह्मा जी हैं, और जो अनंत प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के गौण मूल उसमें से उत्पन्न होते हैं, मूल मतलब जड़, और वो हैं अनंत प्रकार के संस्कार जो कर्म मार्ग में या अपने इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति करने की इच्छाओं के कारण बनते हैं। यानी इंद्र तृप्ति करने की अनेक अनेक इच्छाएं हैं, वही इसके गौण जड़े हैं। तो यानी कि व्यक्ति को वो स्थान पदम देखना चाहिए, ततः पदम तद परिमार्गितव्यम, वैसे देखना चाहिए जो इस मूल के भी ऊपर है, मतलब ब्रह्मा जी के लोक के भी ऊपर है, और उसको वो साधन देखना चाहिए जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति करे, जैसे कि श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, और ये केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस जगत में अगर आप किसी को पूछिए कि इस जगत से मैं कैसे मुक्त हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हूँ, तो पहले तो लोग, बात यह है कि लोग जानना ही नहीं चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और दूसरा मालूम होने के बावजूद भी वह उनको ये सही सही पता नहीं है कि हम लोग कैसे इस चक्र से मुक्त होंगे। अब प्रश्न आता है कि वह पदम, वो स्थान है कैसा, भगवान का धाम है कैसा, तो वो यह कह रहे हैं कि उसको प्राप्त करने के बाद, यानी भक्ति की साधना करने के बाद जब कोई व्यक्ति भगवत प्राप्त कर लेता है तो वहां से गिरता नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के कर्म फल समाप्त होने के बाद गिर जाता है, उस प्रकार से भक्त लोग भगवान के धाम से गिरते नहीं हैं, एक बार भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और क्या तरीका है उस पद को प्राप्त करने का, तो वो है प्रपद्ये, यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। और वो कैसे पुरुष हैं, किनकी शरण ले रहा हूं मैं, तो उसमें लिखा है आद्यम, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आदि पुरुष की शरण में जाएं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही वो तरीका है, वो साधना है जिसके द्वारा वो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो यानी कि भगवान के खोज करना, यानी परिमार्गितव्यम का अर्थ है भगवान के बारे में सुनना और भक्त नवदा भक्ति के विभिन्न अंगों का अनुशीलन करना। अब जिस पुरुष या जिस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसकी शरण में जाने से ये संसार नष्ट होता है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। जो व्यक्ति समझता है कि भगवान कृष्ण ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत हैं, सब कुछ उनसे ही आता है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ठीक ठीक प्रकार से समझ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है और अपने पूरे हृदय से उनकी सेवा करता है। साथ साथ ये भी हम सुनते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते, यानी कि ये जो भगवान की माया शक्ति है, वह भगवान त्रिगुणात्मक माया शक्ति है, वह प्रायः संभव है उसको लांघना, लेकिन जो भगवान को शरणागत होता है वह बहुत आसानी से इसको पार कर जाता है। आगे भगवान और ये भी कहेंगे 15वें अध्याय में ही, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान का जो धाम है वहाँ पे सूर्य चंद्रमा और अग्नि की जरूरत नहीं है रोशनी को उत्पन्न करने के लिए, और उसको प्राप्त करने के बाद, धाम को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो ये सारा हमने श्लोक सुने, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं अर्थात ब्रह्मलोक में, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। बहुत सुंदर बात है, बोटानिकल गार्डन कलकत्ता में बहुत बड़ा वृक्ष है अश्वत्थ का, तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है अश्वत्थ का। मान लीजिए आम का पेड़ है तो उस प्रकार से उसकी गौण जड़ें नहीं निकलती हैं, तो अगर एक बहुत विशाल का पेड़ भी हो अगर आम का, तो आप बोल सकते हो उसकी जड़ यहाँ है और ये इस प्रकार से इसका मोटा तना यहाँ पे है और यहाँ से उगा है, लेकिन अश्वत्थ पेड़ की जो गौण जड़ें हैं यानी बरगद के पेड़, तो वो इतना मोटी हो जाती हैं कि कभी कभी वो मुख्य जड़ से भी मोटी हो जाती हैं, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है हो जाता है कि कौन सी जड़ जो है वो मूल जड़ है, इसीलिए इस बात को बोला जा रहा है। फिर भी मनुष्य की कारण की खोज करनी ही होती है, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि, इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदकशाय विष्णु ने उत्पन्न किया, इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। यानी ये प्रभुपाद समझा रहे हैं ततः पदम तद परिमार्गितव्यम को, यानी कि व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि मैं इनका पुत्र हूं और मैं वो उनके पिता, वो उनके पुत्र हैं, फिर वो उनके पुत्र हैं। इस प्रकार से व्यक्ति खोजता चला जाए कि अंततः व्यक्ति कौन है जिसे सभी लोग आते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगा। और ब्रह्मा जी के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु उनकी उत्पत्ति के कारण है। खोजने का अर्थ है शास्त्रों में भी समझेगा, शास्त्रों से सुनेगा। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है, अर्थात भगवान वहां पे कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, भगवान के कोई माता पिता नहीं है। तत्व की दृष्टि से भगवान कोई स्रोत नहीं है, भगवान आदि पुरुष है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। बहुत बार लोग ईश्वर को निराकार बोलते हैं, जबकि ईश्वर का मतलब कंट्रोलर होता है, तो कंट्रोलर तो एक व्यक्ति होगा, वो निराकार कैसे हो सकता है। तो ये इस प्रकार के लोग अपना ख्याल अपनी धारणा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद वह स्पष्ट बोल रहे हैं कि भक्तों से सुनना चाहिए कि ईश्वर का मतलब क्या है, परमेश्वर का मतलब क्या है, आदि पुरुष का मतलब क्या है। यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं आदि पुरुष की शरण में जाना है, आदि निराकार की शरण में नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो यानी कि व्यक्ति भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा अपनी स्थिति को समझे और इस जगत से निकलने का प्रयास करे, तभी से उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भक्त संग में रह करके वो भगवान के बारे में सुने। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। इस तो आप समझ गए थे कि संग का मतलब होता है विषय भोग की आसक्ति। अतएव प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना, मतलब भगवान के भक्तों से सुने कि भगवान कौन है, जगत के स्वरूप के बारे में समझें, अपनी स्थिति के बारे में समझें, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि मुझे भगवान की शरण लेनी है और भगवान की शरण लेना एकमात्र कार्य है। मेरा ये कार्य नहीं है कि मैं इस जगत में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं, क्योंकि जगत दुख का घर है, अपितु मेरा एकमात्र कार्य है कि मैं भगवान कृष्ण की शरण में जाऊं। यही मेरे कार्य है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा कार्य है। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम के बारे में बात हो रही है। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ये एकदम स्पष्ट है, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी जैसे बोल रहे वैसे प्रभुपाद जी ने तत्व ने बताया था। यही हमने सीखा था कि श्रवण शरण में जाने का अर्थ है भगवान की भक्ति करना। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है, इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभवा, ये भी देखिए आचार्य जी ने कोट किया था, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं, अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। इसको भी आचार्य जी ने टीका में बताया था किस प्रकार से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है अगर भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान की शरण ग्रहण करके ही वो माया से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो यानी कि अश्वत्थ वृक्ष को समझे व्यक्ति कि मैं इस जगत में फंसा हुआ हूँ अनंत अनादि काल से, लेकिन इसका अंत किया जा सकता है भगवान की शरण लेकर के। और भगवान की शरण लेकर के भगवान के धाम पहुंच जाएगा जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, तो वापस इस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। और वो आदि पुरुष हैं, निराकार नहीं है, आदि पुरुष जो है वो है कृष्ण। हरे कृष्ण।